पिछली बार हमने प्रेरित काम उसके 19 अध्याय को पर मनन किया था। प्रेरित काम उसके 20 अध्याय को पहले पद से लेकर 12 पद तक का संक्षिप्त में कुछ बातों पर विचार करेंगे। पिछली बार जब हम 19 अध्याय में थे, हम देख रहे थे किस प्रकार से पौलुस इफिसस में है और इफिसस में वो प्रचार कर रहा है 19 अध्याय में। प्रेरित काम उसके 19 अध्याय में पिछली बार हमने देखा था और किस रीति से विरोध का सामना उसको करना पड़ा, क्या कारण था। कारण एक कारण था कि वहां पर एक बहुत भव्य मंदिर था और उस भव्य मंदिर में जो अमृतास की देवी थी, बहुत बड़ी मूर्ति बनी थी, देवी बनी थी, और लोगों का यह मत था कि ये मूर्ति जो है, मंदिर जो बना हुआ है आर्टिमिस का, उसका मंदिर में विराजमान हुआ है। मुझे नहीं मालूम, कई सारे स्थानों में आप देखते हैं। मुझे एक बार बहुत पहले कुल्लू मनाली में जाने को मिला, तो हमने वहाँ एक जगह गए तो वहाँ पर बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं, बहुत बड़े बड़े पत्थर, और लोगों का मत यह है कि लोग वहाँ पर पूजा करते हैं। लोगों का मत यह है कि मक्खियाँ उस पत्थर को उठाकर लाई हैं, मक्खियाँ, और बहुत भारी भारी। सो ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो हम देखते हैं, और हम पुराने नियम में जब देखते हैं तो मक्खियों के देवताओं के बारे में बात करते हैं। सो परमेश्वर के वचन को बहुत जब पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें वर्तमान या जो आगे आने वाली हैं वो सबको बहुत चित्रण में दिखाती हैं, और उन सारी चीजों को देख करके हमें बाइबल को समझने में और मदद कर मिलती है, सहायता मिलती है, जिससे कि हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का वचन कितना सच्चा है। ये पौलुस की तीसरी सुसमाचार प्रचार ये यात्रा है, जहाँ की पौलुस ने जाकर जगह जगह सुसमाचार प्रचार करा और कलीसिया की स्थापना हुई। हम पिछले दौर में पहली यात्रा को देख चुके हैं, दूसरी यात्रा को देख चुके हैं, जिसमें किस तरह से अलग अलग कलीसियाओं की स्थापना हुई है। अब देखिए, इन दिनों में कोरोना के समय में हमें एक दूसरे को उत्साहित करने की आवश्यकता थी, और हमने किया, आपने किया, किस तरह प्रार्थना करने के द्वारा, हालचाल पूछने द्वारा, किसी की सहायता करने द्वारा, किसी भी रीति से, है ना। और इस बात में भाई जो भी परिस्थिति हो, प्रभु को न छोड़ो, प्रभु को थामे ना रहे, यह है विश्वास। परिस्थिति कैसी क्यों ना जाए, कैसी क्यों ना, सब कुछ होगा, भूचाल आएंगे, अकाल पड़ेंगे, तूफान आएगा, विरोध होगा, विरोध बाहर से भी होगा, विरोध भीतर से भी होगा, कई तरह से विरोध, विरोध एक तरह। जब हम कलीसियाओं के बारे में पढ़ते हैं तो कलीसियाओं में बहुत सारे विरोध बाहर से भी, भीतर से भी, पिछले दिन हम देख चुके हैं, तो वो भी होगा। लेकिन उस सब कुछ में हम अपने विश्वास को ना छोड़ें, हम साहस को ना छोड़ें, हम जिस यीशु की ओर हमने देखा है, जिसको हम ताक रहे हैं, उसको ताकते हुए आगे की ओर बढ़ते जाएं। इसीलिए इब्रानी को लिखा है कि यीशु की ओर ताकते चलो, हमें उसको देखा, हमारा अंतिम निशान जो है वो यीशु मसीह है, अंतिम पड़ाव जो है वो यीशु मसीह है, जिसके साथ हमें अनंत काल तक राज करना है। सो वो यहाँ पर कहकर करके उनको उत्साहित कर रहा है, और पौलुस के अंदर ये एक विशेषता थी, और जो शब्द लिखा हुआ है अत्यधिक उत्साहित, केवल उत्साहित नहीं करा, अत्यधिक उत्साहित करा। शायद उनके लिए प्रार्थना करना होगा, शायद उनको उनकी समस्याओं का समाधान कर रहा होगा, शायद उनको वचन और समझा रहा होगा, शायद उनको और अधिक कह रहा होगा, भैया परेशान मत होना, विरोध आएगा, रोमी राज तुम्हें परेशान करेगा, यहूदी लोग तुम्हें परेशान करेंगे, ये लोग कहेंगे तुमने व्यवस्था को नहीं मान रहा है, ये कर रहे हो वो करो, तुम्हारा ठट्टा उड़ाएंगे, चिंता मत करना, तुमने सच्चे विश्वास को पाया, तुमने यीशु मसीह को पाया, वो यीशु मसीह जो एकमात्र सच्चा जीवित परमेश्वर है, वो यीशु मसीह जो इस मनुष्य संसार में मेरे और आपके लिए मनुष्य बनकर आया। हम तो पापी थे, हमने तो पाप किया था, हम परमेश्वर के राज से अलग थे, परमेश्वर की योजना से अलग थे, परमेश्वर के प्रेम से अलग थे, हम तो उसके शत्रु और बैरी थे, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रभु उस प्रेम के लिए जो उसने पहले क्रम से किया कि अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेज दिया, और वो इस संसार में आया, ना केवल उसने अच्छे काम किए, लेकिन उसने मेरे और आपके लिए क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर दिया। और मैं पिछले वेंसडे को बाइबल स्टडी में कह रहा था कि जब सुसमाचार की बात करते हैं तो क्रूस का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्रूस वो स्थान था जिस स्थान पे उसने मेरे और आपके लिए पापों की कीमत को चुकाया है, क्रूस वो स्थान था जिसने मेरे और आपके लिए, मेरे और बाप के पापों के लिए निंदा को सहा है, क्रूस वो स्थान था जिस स्थान पे उसने मेरे और आपके लिए शत्रु शैतान की सारी योजना को परास्त किया है, और उसने क्रूस पर विजय पाई है, वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जुटा, आज वो सिंहासन पर विराजमान है, और एक दिन फिर से आएगा, मुझे और आपको ले जाएगा कि मैं और आप अनंत काल तक उसके साथ राज करेंगे। यह है मेरे और आपके लिए उत्साह की बात, यह है मेरे आपके लिए आनंद की बात, कि हम इस संसार में जितनी भी आपदा सही कोई बात नहीं, लेकिन हमारा अंतिम पड़ाव जो है वो यीशु मसीह के साथ है, परमेश्वर के साथ है, अनंत काल का राज है। और इसलिए हमें अपने विश्वास को थामे रहना है, परेशान नहीं होना, घबराना नहीं, व्याकुल नहीं होना, चिंतित नहीं होना, लेकिन यीशु की ओर ताकते हुए हमें निरंतर आगे और आगे और आगे बढ़ते जाना है। सो प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इन सारी बातों को देख सके। तो वो क्यों करते हुए आगे बढ़ता है, तब वो तो लिखा वो 3 महीने उसने वहां बिताए, फिर जहाज से लेकर उसके पास आगे चल गया। लेकिन 4 पद में तब हम देखते हैं उसके बाद, तब हम उसके बाद देखते हैं कि किस रीति से उसके साथ अब एक समूह है, उस समूह में उसने किस रीति से परमेश्वर के कार्य के लिए लोगों को तैयार किया है। सो यहाँ पर भी रहे में करीब 7 लोग हैं जो उसके साथ हैं। सो पुत्र निवासी, फिर तो थिस्सलुनीके का निवासी अरिस्तर्खुस, ये नाम जो दिए गए हैं, कई बार हम नामों को बड़े हल्के से ले लेते हैं, पढ़ते और पढ़ते चले आते हैं, लेकिन ध्यान रखिए परमेश्वर का वचन ये कहता है कि परमेश्वर ने अपने वचन को अपने पवित्र आत्मा के द्वारा लिखवाया है। और जब उसने पवित्र आत्मा के द्वारा लिखवाया है तो उन नामों की कुछ कीमत है, वो नाम भी उसने किसी खास कारण से लिखे हैं। अब समय नहीं कि हम उस पर जाएं, लेकिन घर में अगर आप देना चाहते हैं तो इन नामों में से कुछ नामों का वर्णन कहीं ना कहीं दूसरे स्थलों में मिलेगा, तो काम मिलेगा, पत्र में मिलेगा, जो उसके साथ सहकर्मी रहे, जिन्होंने उसके सेवा में सहयोग किया। पर पौलुस के साथ इस तरह से टीम और समूह बनकर तैयार होता रहा और वो आगे बढ़ते रहे और चलते रहे। तीमुथियुस कहाँ है आप उसको जानते हैं, तिखिकुस है, त्रुफिमुस है, ये सब लोग, गयूस है, गयूस के बारे में भी हम पढ़ते हैं। क्या मतलब है? मतलब ये है पौलुस सदैव सुसमाचार के साथ साथ अपने साथ अन्य लोगों को तैयार कर रहा है। एक विश्वासी का जीवन केवल अपने विश्वास को थाम के रखने का नहीं है, लेकिन किसी न किसी के साथ सुसमाचार को बांटने का है, किसी न किसी को तैयार करने का है, किसी न किसी के साथ प्रार्थना करने का है। आप जो परिवार में, मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूं, आप जो परिवार में शायद 6-7 महीने बीत गए, मुझे नहीं मालूम, हम डरते हैं, डरना नहीं है, लेकिन सावधान होना है। डर अलग है, सावधान अलग है, सावधानी बरतना अलग है, डरना अलग है। डर के मारे हम बात नहीं करेंगे, हम छुएंगे नहीं, हम पास नहीं आएंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, अरे दूर रहेंगे, घर से नहीं निकलेंगे, बाकी सब काम करेंगे, बाजार भी जाएंगे, ऑफिस भी जाएंगे, लोग नहीं नहीं, डर का मतलब है सर हमें सावधानी बरतनी है कि जो प्रिकॉशन लिए जाने हैं प्रिकॉशन को लें, सावधानी बरती है। और पूरे हमारे पूरे दिन यहाँ पर हम उसी भीतर प्रकाश से, चाहे ऑफिस का काम होता है, चाहे कोई काम होता है, सावधानी बरतते हैं हर एक के लिए, जो भी आता है, जो करना हम करके तब उनके साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं। लेकिन मेरा कहना मतलब ये है कि हमें किसी ना किसी के साथ सुसमाचार को बांटना है, कोई ना कोई तैयार करना है। मैं पिछले दिनों में किसी से बात कर रहा था, वो सेवा के दूसरी कलीसिया में सेवा करते हैं, और जब मैं उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने बताया मेरी वाइफ जो है फलाने फलाने स्कूल में पढ़ाती हैं, और तब उन्होंने कहा कि स्कूल पढ़ाते हुए उन्होंने 2 जनों को सुसमाचार सुनाया और वो हमारी कलीसिया में, बहुत अच्छी बात है। स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेजेस, फैक्ट्री, हमारे भाई लोग हैं कुछ ऐसे जो फैक्ट्री में दूसरों को संदेश देते हैं और वो लोग आते हैं यहाँ पर। अभी पिछले दौर में एक भाई टाटा से आया, भाइयों के द्वारा आया है। हम देखते हैं किसी न किसी रीति से हमें अवसर को खोना नहीं है, हमें किसी न किसी को प्रभु के पास लाकर उनको मजबूत करना है। केवल इस सेवकों का काम नहीं है, मेरा आप सबका काम। सो पहले 4 पद में हम इस बात को देखते हैं, लेकिन आगे चल करके अब 2 खास बात है। मैंने कहा समय का मैं ध्यान रखूंगा, 2 खास बात, 5 से लेकर 12 पद तक 2 मुख्य बातें। एक मुख्य बात यह है कि अब पौलुस त्रोआस में पहुंचा है, और त्रोआस में पहुंच करके वहां अखमीरी रोटी का पर्व है, उसके पर्व के पश्चात उसको वापिस जाना है। लेकिन मैं पढ़ता हूँ पहले कुछ पदों को, परंतु ये लोग हमसे आगे चले गए और त्रोआस में हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे। अखमीरी रोटी के पर्व के पश्चात हम फिलिपी से जहाज द्वारा निकले और 5 दिन में उसके पास त्रोआस पहुंचे और वहां 7 दिन रहे। अब 7 दिन रहकर त्रोआस में उसने वही काम किया, लोगों को सिखाना है, लोगों को समझाना है, लोगों को बचाना है, लेकिन उसके साथ साथ क्या और कर रहा है। 7वें पद में सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए एकत्रित हुए, अभी मैं इसमें वापिस आऊंगा, लेकिन एक और घटना घटती है। ये रोटी तोड़ने के लिए वापिस इकट्ठा थे, लेकिन अब पौलुस कुछ और कर रहा है। इस पद में मैं अभी लौटूंगा। तो पौलुस उनसे बातें करने लगा। दूसरे दिन जाने पर था, इसलिए आधी रात तक उपदेश देता रहा। जिस अटारी में हम एकत्रित हुए थे वहां बहुत से दीपक जल रहे थे। युतुकुस नाम का एक युवक था जो खिड़की पर बैठा हुआ नींद के झोंके में था। खिड़की पर बैठ करके वो वचन सुना था, पौलुस वचन सुना रहा था। शायद वो अटारी, जो अटारी थी, अटारी हमेशा प्रोटिकोटिक को कहा जाता था। प्रभु यीशु मसीह ने अंतिम फंसा उसी प्रोटिकोटिक में करी। प्रेरित काम उसके 12वें अध्याय में, जहां पतरस से बंदीगृह से छूटकर आया था और लोग प्रार्थना करते, वो भी प्रोटिकोटिक थी। तो मैंने पिछली बार भी शायद बताया था कि हमेशा लोग क्या करते, लोग अपने घरों में ऊपर या सबसे ऊपर एक बड़ा हॉल टाइप का बनाया करते थे, और जब भी प्रभु के काम मीटिंग या सभा होने पड़ती थी, और इसलिए वहां पर होकर के वो लोग उस बैठ करके, क्योंकि इस तरह के चर्चेस नहीं थे। इस तरह के चर्चेस की जो हुआ है वो 300 साल के बाद शुरू हुई। जब प्रभु यीशु मसीह के जुटने के बाद, जब प्रभु असुर में चला गए, तो उसके बाद 300 साल तक लोग घरों घर 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 में इकट्ठा होते थे और मिलते थे। और अधिकतर लोग घर को एक कमरा अच्छा बड़ा बनाए थे जहां कम से कम 60-100 लोग आराम से मिलते थे। और इसीलिए अभी भी मैं लोगों को इनकरेज करता हूँ, कल ऐसे दिन आएंगे। शायद होता है कि हम लोगों को घरों में मिलना पड़ेगा, कोई बात नहीं, लेकिन सही रीति से, सही तरीके से प्रभु का काम होना चाहिए। जब तक प्रभु ने आजादी दी है, हम प्रभु कार्य को स्वतंत्रता से करते जाएंगे। तब यहाँ कह रहे हैं वो लोग ने अब ये तक तो वचन सुना था, लेकिन सुनते सुनते उसके नींद आ गई, और नींद आकर के खिड़की से नीचे गिर गया। लिखा है वो खिड़की से ऊपर से नीचे गिर गया और मरा उठाया, लोग चल के उसकी मृत्यु हो गई। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने पौलुस को इस्तेमाल किया। अब यहाँ पर परमेश्वर पौलुस के द्वारा न केवल सुसमाचार का प्रचार कर रहा है, लेकिन परमेश्वर पौलुस के द्वारा अपने सामर्थ्य के काम को भी प्रकट कर रहा है। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, सुसमाचार को पढ़ते हैं, तो सुसमाचार के प्रचार के सिद्धांत है। हम लोग कई बार एकदम से परमेश्वर के सामर्थ्य के कार्य पे पहुंच जाते हैं। चंगाई 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 पाप नहीं है, चंगाई बुरा नहीं है, परमेश्वर करता है, लेकिन सुसमाचार प्रचार बहुत जरूरी है। यदि मनुष्य संसार की सारी वस्तुओं को प्राप्त करे और प्राण के अंत है तो उसके क्या लाभ। यहाँ पर भी पौलुस के वही क्रम को देख रहे हैं। पिछले बार भी मैंने इतवार को शेयर करा था और बार बार मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ। मती में जाएं, चाहे लूका में जाएं, यौन्ना का वही सिद्धांत था, उसके साथ साथ प्रभु यीशु मसीह का वही सिद्धांत था, प्रेरितों का वही सिद्धांत था, प्रीचिंग टीचिंग हीलिंग, ये सिद्धांत है। प्रचार करना, शिक्षा देना, चंगाई देना। हमेशा आप देखिए चंगाई तीसरे स्थान पर, हम उल्टा कर देते। मैं फिर से कह रहा हूँ, चंगाई के विरोध में हम नहीं है। प्रभु का धन्यवाद, हम भाई के लिए प्रार्थना के लिए बहुत लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं और आज हम आनंद लेते हैं, प्रभु धन्यवाद से। तो हमें प्रार्थना करनी है। कई बार ऐसे समय भी आते हैं कि हम एकदम से किसी दुष्ट आत्मा के लिए प्रार्थना करनी पड़ती है, वो भी है, प्रभु धन्यवाद वो भी करते हैं, लेकिन केवल दुष्ट आत्मा निकल गई लेकिन उसकी आत्मा की चंगाई नहीं हुई तो क्या लाभ। अब उसको सुसमाचार सुनना है, उसके जीवन को, उसकी आत्मा को नरक के दर से बचना है। शरीर बच जाए लेकिन अगर आत्मा नरक में चला जाए तो क्या फायदा। और इसलिए जो भी हम विश्वासी हैं, चाहे सुसमाचार सुनाते हैं, चाहे प्रचारक हैं, चाहे पास्टर हैं, चाहे सेवक हैं, चाहे विश्वासी हैं, हमारा कर्तव्य यह है कि हम किसी भी बीमार के लिए प्रार्थना करें। पाप नहीं है, करिए, लेकिन ये ध्यान रखिए केवल शारीरिक चंगाई पर जोर ना दीजिए, उसके साथ बैठ करके सुसमाचार को जरूर पढ़िए। उसको वो बोध आना चाहिए कि उसको एक और चंगाई की जरूरत है, वो पापों की क्षमा का छुटकारा, चंगाई की जरूरत है ये। और ये पौलुस ने करा, तब ये बालक चंगा होता है और उसके साथ बालक को वो उनके हाथ में कर देता है। परमेश्वर अपने सामर्थ्य को प्रकट कर रहा है पौलुस के द्वारा, परमेश्वर अपने अधिकार को प्रकट कर रहा है पौलुस के द्वारा, ताकि लोग उसको समझ सके, पहचान सके, उसका सम्मान कर सके, ये होता है। लेकिन सातवें पद में सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए एकत्रित हुए, आज भी लोग, बहुत से लोग आपके साथ आएंगे, बात करेंगे, आप सबत के दिन को क्यों नहीं मानते, शनिचर का दिन पहले समय में पुरानी व्यवस्था के अनुसार सबत का दिन ठहराया था, और वो ये था कि उस दिन कोई भी व्यक्ति काम नहीं करता था, सब कुछ करके, जैसे छठे दिन लिखा हुआ है प्रभु ने विश्राम किया, तो उस दिन कहते हैं विश्राम करना कुछ। लेकिन जब परमेश्वर के वचन को पाते हैं पहली चीज, ये जो फसह का जो पर्व है, ये जो रोटी तोड़ने का, ये कहां से आरंभ हुआ? ये आरंभ हुआ पुराने नियम से। अगर आप घर में जाकर के निर्गमन उसके 12 अध्याय का आप अध्ययन करेंगे, तो 12 अध्याय में जब लोग छुटकारा पाए हैं और छुटकारा पाने के बाद आगे बढ़े हैं, और तब परमेश्वर ने किस तरीके से इनको वहां से निकालने के बाद आगे ले गए, और तब वहां पर इन लोगों ने मिलकर के सबसे पहले ये फसह के पर्व को मनाया है, सबसे पहले फसह को पर्व मनाया। तब उसके बाद हम देखते हैं नए नियम में आकर के वही चीज परिवर्तित हुई है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह सबसे सर्व अधिकारी प्रभु है, और वो स्वयं उसने कहा है मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। उसने स्वयं कहा है परमेश्वर। कई लोग इस बात को प्रश्न करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहां कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो परमेश्वर के वचन में है, जब लोग जब उसके साथ उससे बातचीत करते, उसे पूछ रहे थे, लूका उसका 22 अध्याय, मैं उसको आपके सामने कोट कर रहा हूँ। कई बार बहुत सारे लोग बात करते हैं कहाँ पर, इवन जो हमारे मुस्लिम भाई लोग वो अक्सर कहते हैं कहाँ उसने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, कहाँ उसने कहा। लूका उसका 22 अध्याय और उसका 70 पद 69 से पढ़ रहा हूँ मैं। परंतु आप सब मनुष्य का पुत्र परमेश्वर के सामर्थ की दाहिनी ओर बैठाया जाएगा। तब सब ने पूछा तो क्या तू परमेश्वर का पुत्र है। अब सब ने पूछा तो तू क्या परमेश्वर का पुत्र है। उसने कहा हाँ मैं हूं। स्पष्ट प्रभु कह रहा है सो सच है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पुत्र होकर के इस संसार में आए। सो जब हम देखते हैं तो जब आए तो प्रभु यीशु मसीह के जाने से पहले, क्रूस पे जाने से पहले, उसने अपने शिष्यों के साथ फसह का पर्व को मनाया, और उस फसह के पर्व में अब वो रोटी नहीं थी जो अखमीरी रोटी थी, उसने वहां देते हुए जो कुछ करते हुए सबसे बढ़कर उसने अपने आप के अपने देह को रोटी के रूप में प्रकट किया, अपने लहू को लहू के रूप में प्रकट किया, और उसने उनसे कहा ये वो दोए है जो तुम्हारे तोड़े जाने की, जब ये प्रभु भोज में समा के थे हम उसको, वो क्या है, वो ये प्रतीक दे रहा है इस बात के प्रतीक को कि अब वो रोटी जो तुम पुराने समय में खाते चले आए हो, वो फसे के पर को अब तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ये जो तुम्हारे सामने दे है वो तुम्हारे लिए बलिदान की जाएगी, ये वो रोटी है जो तुम्हें जीवन प्रदान करेगी। और उसके बाद उसने वो कहता है कि वो लहू है जो तुम्हें सच्चा जीवन देगा, क्योंकि लहू में जीवन पाया जाता है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही स्पष्ट रूप से इस बात को कहा है। प्रेत काम उसके दूसरे अध्याय में दूसरे स्थल को पाते हैं। अब प्रभु ने कहा, उसके बाद प्रभु यीशु बलिदान हो गए, बलिदान होने के बाद प्रभु यीशु मसीह जी उठे हैं, और जी उठने के बाद जब पवित्र आत्मा उन्हें ले आता है तो कलीसिया के नियम बनाए जाते हैं। कलीसिया बनाई जाती है, जब कलीसिया बनाई जाती है तो दूसरा अध्याय के 42 पद में और लिखा हुआ है, अब शिष्य शिक्षा पाने में, प्रार्थना करने में, रोटी तोड़ने में और संगति करने में लगे रहे। वहां से क्यों, अब ये दिन जो प्रभु यीशु मसीह का जी उठने का दिन था वो प्रथम दिन बन गया। प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का दिन प्रथम दिन बन गया। अब हमें उस सबत के दिन को मनाने की जरूरत नहीं है। सबत तो एक प्रतीक था कि मनुष्य को परमेश्वर विश्राम दिलाए, ध्यान दीजिएगा, सबत तो एक प्रतीक था कि परमेश्वर मनुष्य को विश्राम दिलाएगा, लेकिन हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं वो प्रतीक की पूर्ति प्रभु यीशु मसीह में हुई, कि प्रभु यीशु मसीह में अनंत का विश्राम, जिन्होंने उस पर विश्वास किया वो अनंत काल तक उसके साथ राज करेंगे और अनंत विश्वास में उसके साथ रहेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह अनंत का विश्राम है। अब हमें उस शब्द को मानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने अब इस प्रथम दिन को, सप्ताह के प्रथम दिन को, अभी 16 अध्याय में भी है, तीन चीजें ध्यान दीजिएगा, तीन बातें जो परमेश्वर का वचन सिखाता है। पहली चीज, ये आराधना का दिन ठहरा दिया गया। ये जो सप्ताह का पहला दिन है वो आराधना का दिन ठहरा दिया गया परमेश्वर के लोगों के लिए। और इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि यदि आप सच्चमुच में प्रभु यीशु से प्रेम करते हैं तो आप उस दिन को, समय को परमेश्वर के सम्मान में व्यतीत कीजिए। आप ऑफिस जाना है, कार्य जाना है, मैंने 10 साल प्रभु की दया से फैक्ट्री में मैं काम किया हूँ, चक में काम किया हूँ, मैं भी उसी परिस्थिति में होकेगा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ, प्रभु के साक्षी के रूप में देखता हूँ, मेरे अधिकारी जानते थे क्या ये बात, लॉकडाउन होने के कारण, फैक्ट्री लॉकडाउन होने के कारण इलेक्ट्रिसिटी कुछ कारण से कई बार ऐसा हुआ जबकि इतवार को हमें आना पड़ता था, लेकिन मैं वो मुझे परमिशन देते थे। उनको मालूम था मेरे जीवन की साक्षी, उनको मालूम था। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने ऐसा किया। मेरे प्रियो, आप कुछ काम करते हैं, व्यवसाय करते हैं, दुकान खोलते हैं, कुछ और करते हैं। हमारे बीच में एक भाई है यहाँ पर जिनकी दुकान है, और उन्हें कहा मैं दुकान बंद करके पहले आराधना में आऊंगा, फिर जाके दुकान खोलूंगा। सो प्रभु सहायता करे, सच में हमारे जीवन में समर्पण हो। पहले हम परमेश्वर के भवन में जाएंगे, उसके बाद कभी हो जाता है, कभी हो सकता है इमरजेंसी आती है, लेकिन हैबिट मत बनाइए। कभी होना एक अलग बात है, निरंतर होना एक अलग बात है। कभी हम बीमार पड़ते हैं, कभी हमें कहीं आना पड़ता है, कुछ और बात होती है, होता है। तो उसके लिए परमेश्वर हमारे मन को, हमारी इच्छा को जानता है, लेकिन आदत मत बनाइए। दूसरी बात, ना केवल आराधना का दिन ठहराया गया, दूसरे दिन प्रभु भोज का दिन ठहराया गया। तीसरी बात, एक और बात, पहला क्रंथियों उसका 16 अध्याय, माफ कीजिएगा ये कुछ बातें बोलते हुए थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन परमेश्वर के वचन में इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। 16 अध्याय पहला दूसरा पद, पवित्र लोगों के लिए दान एकत्रित करने के संबंध में जो निर्देश मैंने गलतियां को कलीसिया को दिया है उसे तुम भी मानो। सप्ताह के पहले दिन तुम में से प्रत्येक अपनी आय के अनुसार अपने पास कुछ रख छोड़े कि मेरे आने पर दान एकत्रित ना करना पड़े। सप्ताह के पहले दिन इकट्ठा कर लो। तो सप्ताह का पहला दिन आराधना का दिन है, सप्ताह का पहला दिन प्रभु भोज का दिन है, सप्ताह का पहला दिन प्रभु के लिए भेंट देने का दिन है। ये तीन बातें स्पष्ट परमेश्वर का वचन सिखाता है, और इसलिए हमारे हृदय को तैयार रहना है और इकना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उन्होंने क्या हुआ, वो रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठा हुए। जब हम इसके बाद प्रभु भोज में जाएंगे तो और हम इसको विस्तार से देखेंगे, लेकिन आज संक्षिप्त में हम किन बातों पर, इन बातों पर विचार करके क्या देखना चाहते हैं। पहली बात, पौलुस के समान मेरे और आपके हृदय में सुसमाचार के लिए बोझ और प्रेम होना है, चाहे कैसी परिस्थिति हो, यात्रा हो, कहीं और हो, कुछ भी हो, आप यात्रा करते हैं, दो चीज को मत भूलिए अपने साथ। एक तो बाइबल को मत भूलिए। हम सब कुछ पैक कर लेते हैं, बाइबल ले जाना भूल जाते हैं, बाइबल को मत भूलिए। दूसरी चीज, कुछ ना कुछ साहित्य जरूर अपने पास रखें, कुछ ना कुछ साहित्य अपने पास। मैं एक बार एक कॉन्फ्रेंस में था, बहुत पहले, भाई केपी, उन्होंने कहा आपने बहुत नाम सुना होगा, प्रभु ने उनको बहुत इस्तेमाल किया। मैं बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, जब उन्होंने उन छोड़ करके सेवा को आरम्भ किया था, उस समय उनकी लाइफ, उनका जीवन बहुत कुछ था, अलग था, और उनके जीवन से मुझे बहुत आशीष मिली। और वो एक कॉन्फ्रेंस में बड़े जोर से बोले थे, अपनी साक्षी भी दी। उन्होंने कहा आप जब अपनी यात्रा करते हैं, आप सब कुछ पैक कर लेते हैं, लेकिन क्या आप कुछ और कुछ साथ में लेके जाते हैं। मैंने शायद, मैं गंभीर नहीं था, एक दिन मैं चार बाग में बैठा होता ट्रेन के लिए, और एक व्यक्ति मेरे बगल में आके बैठ गया, और ऐसी बातचीत शुरू हुई। बात शुरू होते होते उसने मेरे से बातें करना शुरू करा, मैंने उससे बात शुरू करा, मैंने बताया आप क्या करते हैं। मैंने कहा मैं चर्च में एक सेवक हूँ, प्रभु के वचन की सेवा करता हूँ, बहुत रुचि करता हूँ। उसने बात करने लगा, और बात करते हुए प्रभु का धन्यवाद जो मैं उससे बात कर सका, लेकिन अंत में उसने कहा कि आपके पास कोई लिटरेचर है। मेरे पास नहीं था, मैं बहुत शर्मिंदा हुआ, मैंने सच में प्रभु क्षमा मांगी, मैं बहुत शर्मिंदा हुआ, कुछ नहीं था। उस दिन से मैंने ठान लिया, चाहे कपड़े हो ना कपड़े, मेरे बैग में पहले लिटरेचर आएगा। उस दिन से मैंने कहा कहीं भी मैं जाऊँ, कहीं भी यात्रा करूँ, मेरे बैग में लिटरेचर आए। बाइबल का ना छोड़िए, कोई ना कोई परिचय को साथ। सच में ये परमेश्वर, हम नहीं जानते किस समय कौन सी आत्मा मिल जाए, किसके द्वारा किसको आप प्रभु के वचन को। तो सर्वोपदेश कहता है अपना बीज रात में भी बो, दिन में भी बो, वो तू नहीं जानता कब उसको फल बनता होगा। बाराबंकी में कई साल बाद एक बार बैप्टिज्म हो रहा था, बैप्टिज्म से पहले मुझे प्रचार करना था वहाँ, और मैं उस समय वहाँ प्रचार कर रहा था। जैसे ही प्रचार खत्म हुआ, एक भाई खड़ा हो गया वहाँ, आराधना खत्म किया उसके बाद बैप्टिज्म था, एकदम से मेरे ऊपर इशारा कर, यही अंकल थे जिनसे मैंने 12 साल पहले, वहाँ परेड ग्राउंड है पुलिस का, उस परेड ग्राउंड में इनसे मैंने साहित्य लिया था। उसे 5 रुपये का केवल पैकेट था, उस 5 पैकेट और 5 रुपये की न्यू टेस्ट उसने मेरे से खरीदी। कितने साल बाद, 12-13 साल बाद उसने वहाँ पर 12 मंकी नहीं जानते तो वो किस समय कैसे काम कर। पहली बात, मेरे और आपके लिए दिन का नज़दीक आ रहे हैं, समय ने मुझे नहीं मान, प्रभु को धन्यवाद प्रभु ने मुझे और आपको कोरोना से बचाया, बीमारी से बचाया, जीवन दिया। खुश था, मुझ पर ही अटैक आ जाता, मैं मैं नहीं बचता, मुझे नहीं मालूम किसको आना, पर प्रभु का धन्यवाद जीवन बहुमूल्य है, उसके साथ व्यतीत करिए। दूसरी बात, प्रभु के दिन का सम्मान करिए, उसको पहला स्थान दीजिए, प्रभु को पहला स्थान दीजिए, प्रभु को पहला स्थान दीजिए, प्रभु के घर को पहला स्थान दीजिए। हो सकता है कई सारी बातों में आपके मन में दुख हो, कुछ हो कुछ हो, परमेश्वर के घर का आप निरादर मत करिए, ये परमेश्वर के वचन के अनुसार है, समझ रहे हैं। तीसरी बात, हृदय में वचन सुनने सीखने समझने की इच्छा को हमेशा जागृत रखिए, परमेश्वर के वचन को सुनने की हृदय में हमेशा किसी न किसी रीति, यही हमारे लिए आपके जीवन की और प्रभु मेरी और आपकी सहायता। जब ये होगा हम परमेश्वर की सहायता से सच में और आगे बढ़ेंगे। सो आज इन 12 पदों में हम पौलुस के सुसमाचार के समर्पण को देखते हैं, लोगों के तैयार होने को देखते हैं, उसके द्वारा परमेश्वर अपने सामर्थ्य को प्रकट करता है, क्योंकि वो परमेश्वर निर्भर था, कर्म परमेश्वर पर विश्वास करता था, वो परमेश्वर का कार्य करते हुए देखता था और परमेश्वर उसको इस्तेमाल कर रहा था। तीसरे सुसमाचार के लिए उठा और किस प्रकार से वो परमेश्वर के दिन का भी सम्मान करता, क्योंकि उसको जाना था, कहता चुप कोई बात नहीं, मैं ये करूंगा, लोगों के साथ मिलूंगा, उसके बाद में जाऊँ, कह रहा वो सप्ताह के दूसरे उसी दिन दूसरे सुबह उसको अपनी यात्रा को आरंभ करना था, नहीं मैं पहले ये करूंगा फिर उसके बाद आ जाऊँ। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें, जीवन में हमारे समर्पण पाया जा सके। आइए प्रार्थना।